ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। जय श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज सुबह की कथा में, और सभी के आशीर्वाद के साथ मैं तात्पर्य प्रभुपाद का श्लोक पढ़ेंगे पहले और फिर अनुवाद तात्पर्य। तो श्लोक इस प्रकार से है, आस्ते स्थानुर स्थानुर अवैकत्र आस्ते स्थाणुरि वैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवती नान्यद्वेदोद्वहन् रतिम् नान्यद्वेदोद्वहन् रतिम् आस्ते स्थाणुरि वैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः
वासुदेवे भगवति नान्यद् वेदोद्वहन् रतिम्।
शब्दार्थ प्रभुपाद जी द्वारा शब्दार्थ आस्ते रहे आए स्थाणु अचल इव सदृश एकत्र एक स्थान पर दिव्यम देवताओं के वर्ष वर्ष शतम 100 स्थिर स्थिर वासुदेवे भगवान कृष्ण पर भगवती श्री भगवान न नहीं अन्यत अन्य कुछ वेद जान पाए अद्वहन रखते हुए रतिम आसक्ति। अब अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। सब कृपा करके बहुत ध्यान पूर्वक सुने प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं इसमें। अनुवाद, इस प्रकार देवों की गणना के अनुसार वे 100 वर्षों तक एक ही स्थान पर अचल बने रहे। सबको सब अटेंड कर रहे हैं ना, सबको पता नहीं क्या कथा चल रही है, कौन कौन रहे। हाँ जी, मलय ध्वज। हाँ जी, तो मलय ध्वज राजा पुरंजन जो हैं वो स्त्री से आसक्त होने के कारण जब उनकी मृत्यु हुई तो स्त्री के शरीर में गए और विदर्भ के राजा के पुत्र बने, पुत्री बने, तो विदर्भी कहलाए और उनका उनके पति थे विदर्भी के मलय ध्वज। और मलय ध्वज यहाँ पे आता है कि मलय ध्वज ने किस तरीके से फिर राज किया। राजा थे मलय ध्वज भी, उन्होंने बहुत अच्छे से राज किया। फिर 7 पुत्र हुए, 7 पुत्रों को अपना राज्य कारभार दे के वो जंगल चले गए। और जब जंगल गए तो जैसे वानप्रस्थ लिया तो पत्नी के साथ गए और वहाँ पे जाके कैसे कैसे तपस्या की, उसके ऊपर 3 शायद श्लोक हो चुके हैं और ये शायद 4th श्लोक है जिसमें किस प्रकार से उन्होंने तपस्या की। और यहाँ पे वो अपनी तपस्या के चरम लक्ष्य पे पहुँच चुके हैं। वो चरम लक्ष्य है कि एक स्थिर मन से सिर्फ भगवान वासुदेव पे ध्यान लगाना, उस स्तर पे पहुँच चुके हैं। और आगे जाके वो कैसे शरीर छोड़ेंगे और भगवत धाम जाएंगे और फिर उनकी पत्नी का विदर्भी का क्या हाल होता है, क्या वो करती है, उसके बारे में आगे आएगा। तो ये श्लोक में प्रभुपाद जी जो बताएंगे वो है कि किस प्रकार से हमें भगवान पे ध्यान लगाना चाहिए और कितना कठिन है ध्यान लगाना। और फिर मैं चर्चा उस पर करूँगा कि लेकिन 2 उपाय हैं ध्यान लगाने के, वो चरम लक्ष्य जो हमारे ध्यान का या भक्ति मार्ग का जो चरम लक्ष्य है उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका अपने बल पे करना और दूसरा तरीका अप्रोच मार्ग लगाना। तो अभी इस पर विस्तार नहीं करूँगा, विस्तार आगे करेंगे। कि एक तरीका है कि जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने बल से उन्होंने ध्यान लगाया और उसके लिए उनको 36,000 साल लगे, जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखेंगे शतम वर्ष, देवी देवताओं के 100 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, फिर जाके कहीं उनका स्थिर बुद्धि से भगवान पे ध्यान लगा। तो आप ध्यान से इसको फिर से सुनेंगे। इस प्रकार देवों की गणना के अनुसार वे 100 वर्षों तक एक ही स्थान पर अचल बने रहे। इसके बाद उन्हें श्री भगवान कृष्ण के प्रति भक्तिमयी आसक्ति उत्पन्न हुई और वे उसी स्थिति में स्थिर रहे। तात्पर्य, भगवद्गीता में 7:19 कहा गया है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे वास्तव में ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों का कारण मानकर मेरी शरण में आता है और मुझी को सब कुछ मानता है। वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। जो यह जान लेता है वह सबसे बड़ा योगी है। भगवद्गीता में यह बताया गया है कि लोग अनेक जन्मों के बाद इसे जान पाते हैं। तो ये ध्यान से सुनेगा, तात्पर्य को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है, तो ये पहला भाग ही चल रहा है। भगवद्गीता में यह बताया गया है कि लोग अनेक जन्मों के बाद इसे जान पाते हैं।
इसकी पुष्टि इस श्लोक के दिव्यम वर्ष शतम शब्दों से भी होती है। देवताओं की गणना के अनुसार एक दिन या 12 घंटे पृथ्वी के 6 मास के बराबर होता है। देवताओं के 100 वर्ष पृथ्वी के 36,000 वर्षों के तुल्य हुए। इस प्रकार राजा मलयध्वज ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद वे भगवान की भक्ति में स्थिर हुए। अब ये सेंटेंस को जरा सुनिएगा। सामान्य मनुष्य को इतने वर्षों तक जीवित रहने के लिए अनेक बार जन्म ग्रहण करना होता है। सामान्य व्यक्ति मतलब कलयुग के लोग। इससे श्री कृष्ण के अभिमत की पुष्टि होती है। वो अभिमत क्या है कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते। तो ये श्लोक भी उसकी पुष्टि करता है। ये तो हो गया पहला भाग इस तात्पर्य का, जिसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति को अगर भगवान में अपने चित्त को लगाना है तो बहुत जन्मों तक बहुत बार जन्म लेना पड़ता है इस धरती पे, फिर कहीं जाके भगवान पे ध्यान लगता है। अब दूसरे भाग में जो अब शुरू हो रहा है उसमें प्रभुपाद जी थोड़ा सा अलग हटके बोल रहे हैं। कृष्ण चेतना प्राप्त करना तथा कृष्ण ही सब कुछ हैं, इस विचार में स्थिर रहना तथा कृष्ण की सेवा करना, ये सिद्धि अवस्था के लक्षण हैं। मतलब चरम सिद्धि क्या है, यहाँ पे अब उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसकी परिभाषा दे रहे हैं कि चरम सिद्धि होती क्या है। तो ये दूसरा भाग है। जैसा कि श्री कृष्ण श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य 22:62 कहा गया है, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जब कोई पूजा द्वारा या कृष्ण की भक्ति करते हुए इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो मनुष्य सचमुच ही सब तरह से पूर्ण हो जाता है। उसे न केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, वरन इस विचार पर स्थिर भी रहना पड़ता है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और अंत में मलयध्वज ने यही सिद्धि प्राप्त की। मैं इस सेंटेंस को फिर से पढ़ूंगा। उसे न केवल मनुष्य को न केवल इस निष्कर्ष पर कि कृष्ण ही सब कुछ हैं पहुंचना होता है कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, वरन इस विचार पर स्थिर भी रहना पड़ता है। स्थिर भी रहना पड़ता है तो कभी कभी ये विचार आ सकता है, अरे कृष्ण ही सब कुछ हैं, होता है। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में भक्ति रसामृत सिंधु में बोला है कि घन तरल होता है, ऊपर नीचे भक्त जाता है, कभी कभी एकदम विश्वास हो जाता है हाँ भगवान ही, फिर अचानक से थोड़ा विश्वास भगवान है क्या, पता नहीं, लग नहीं रहा, मैं ऐसा लगता नहीं, कई जगहों पे भगवान दिखते नहीं। जैसे लोग बोलते हैं बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है, ये काफ़ी समय लगता है इसको ठीक से तत्व के साथ समझना और उसमें अपना ये रखना, क्या धैर्य रखना कि बुरा किया है तो उसके साथ बुरा होगा, थोड़ा समय बीतेगा, जब घड़ा भर जाएगा तो अपने आप ही फूटेगा, ठीक है। लेकिन ये धैर्य नहीं रहता, जल्दी जल्दी अरे रिजल्ट मिलना चाहिए, जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए, वो इतना खराब काम कर रहा है, पुलिस उसको पकड़ नहीं रही, भगवान क्या देख रहे हैं, भगवान अंधे हैं क्या, भगवान के घर अंधेरी है, कहाँ, लोग बोलते हैं देर है पर अंधेर नहीं, मेरा तो पूरा जीवन चला गया, मेरे बाजू वाला आदमी वो बस फ्लरिश ही कर रहा है, वो बस बड़ा ही हो रहा है और मैं गरीबी होते जा रहा हूँ। तो लगता है जल्दी होना चाहिए, ना तो अपने पिछले जन्मों को याद है हमें, ना उसके पिछले जन्म याद है। जैसे भागवतम में पहले स्कंद में आता है, प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि ये एक साइड टॉपिक है, मैं फिर आऊंगा मेन टॉपिक पे, लेकिन साइड टॉपिक को कवर कर लूं पहले। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वहां पे दुर्योधन को, जब दुर्योधन बचपन से पांडवों के साथ बहुत अति कर रहा था, पांडवों को बहुत तकलीफ में डाल रहा था, बहुत धोखाधड़ी किया था, तो भगवान श्री कृष्ण क्योंकि पांडवों से प्रेम करते थे, चाहते थे कि तुरंत दुर्योधन की हत्या कर दें, तुरंत हत्या कर दें, परंतु भगवान श्री कृष्ण का एक स्वभाव है, वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं, और बहुत अच्छे मैनेजर का क्या लक्षण है, बहुत अच्छा मैनेजर वो होता है जो मान लीजिए कंपनी का हेड है और उसके नीचे चार लोग हैं, तो चार लोगों को अलग अलग काम डिवाइड करता है कि भैया तुम इस प्रोजेक्ट पे काम करो, तुम इस प्रोजेक्ट पे, तुम इस तुम्हें, और फिर वो देने से पहले, काम देने से पहले वो बहुत अच्छे से सोचता है कि क्या इनमें योग्यता है इसको करने की। पहले अच्छे से उनको टेस्टिंग कर लेता है, एंट्री कंपनी में एंट्री लेने से पहले ही बहुत अच्छे से उनका स्क्रीनिंग हो जाता है। कंपनी में लेने के बाद पूरे विश्वास के साथ उनको काम सौंप दिया जाता है और बीच में वो मैनेजर उनको हिंडर नहीं करता, बीच में जाके बार बार नहीं बोलता ए तुम क्या कर रहे हो, ए तुम क्या कर रहे हो। अगर ऐसा करेगा तो होगा क्या, वैसा ही होगा जैसे ड्राइवर होता है ना, गाड़ी का ड्राइवर, अगर गाड़ी का ड्राइवर चला रहा है और आप पीछे बैठ के बार बार उसको बोल रहे हैं ए रुक रुक, अरे धीरे चलाओ, तो बेचारा बहुत नर्वस हो जाएगा। आप सोचिए, आप कहीं पे बैठे हैं और हमेशा कैमरे लगे हैं। जब मैं पहले पहले भागवतम क्लास देना शुरू किया था तो बहुत डर लगता था, अभी तो थोड़ी आदत पड़ गई, शुरुआत में थोड़ी नर्वसनेस रहती है फिर चली जाती है, लेकिन कैमरे जैसे ही हमारे ऊपर आते हैं एकदम ऐसा स्टेज फियर बोलते हैं उसको। तो अगर कोई पीछे बैठा हुआ है और हमेशा ऐसे कर रहा है भाई रुक क्या कर रहे, क्या कर रहे, तो घबराएगा। लेकिन ये अच्छा मैनेजर इसके लिए ऐसा नहीं करता, विश्वास कर देता है और फिर वो बाद में जब प्रोजेक्ट हो जाता है तो चेक करता है और चेक करके उसको लेसन भी देता है, पनिशमेंट भी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन बीच बीच में बार 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 उसको हिंदी में बोलते हैं, खराब हिंदी में, किरकिर मत करो। किरकिर नहीं करता। और ये आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद में बहुत अच्छे मैनेजर के गुण थे, मतलब वो तो शुद्ध भक्त है, क्या प्रभुपाद भगवान के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो किसी को सौंप देते थे फिर बार बार नहीं करते थे उनको, फिर देखते थे और समय पे आने पे करेक्शन भी देते थे। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रकृति में टांग नहीं डालते, माया देवी को उन्होंने सौंप दी जिम्मेदारी किसको कैसे पनिशमेंट देना है, अब उसके अपने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन भगवान नहीं करते, हालांकि वो कर सकते हैं, वो स्वराट हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, कर सकते हैं, करते नहीं। और वो यहां पे उस प्रसंग में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दुर्योधन को मार देना चाहते थे लेकिन दुर्योधन के पिछले जन्मों के कुछ शुभ कर्म थे तो भगवान उनको पहले हटाना चाहते थे, और उसके लिए भगवान ने क्या किया, पांडवों के ऊपर उन्होंने कवर कर दिया, जैसे हरिदास ठाकुर को उन्होंने कवर कर दिया था जब उनको 22 मार्केटों में पीटा गया, हरिदास ठाकुर को लग ही नहीं रहा था, हरिदास ठाकुर खुद हैरान थे मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा, 22 आधे मार्केट में ही लोग मर जाते हैं, मैं 22 मार्केट में पीट लिया, कुछ हो क्यों नहीं रहा। और महाप्रकाश लीला में भगवान ने दिखाया कि हे हरिदास, जो तुमको मार पड़ रही थी मेरी पीठ पे देखो, मैं एक्चुअली उसको खा रहा था। तो भगवान उनको कवर कर दिए, और भगवान जहां कवर कर देते हैं वहां पे प्रकृति अपना रंग बदल देती है। जैसे ही भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण का अवतरण होता है, वैसे ही प्रकृति अपना रंग बदल देती है, दशम स्कंद में बताया गया है, मतलब सब कुछ सौम्य हो जाता है, कांटे कांटे जैसे नहीं रहते, कांटे दिखते हैं कांटे लेकिन बन जाते हैं फूल। मीराबाई के साथ हुआ था, प्रहलाद महाराज के साथ हुआ, सभी के साथ हुआ, प्रभुपाद के साथ हुआ, भक्ति सदन ठाकुर के साथ हुआ, सभी शुद्ध भक्तों के साथ ये होता है कि कांटे भी वो फूल हो जाते हैं। कैसे, जैसे ड्रामा चल रहा है और ड्रामा में कई बार आपने देखा होगा पुराने जमाने में स्टेज ड्रामा होते थे, तो चाकू लेके, अभी भी हमारे भक्त करते हैं तो चाकू लग के किसी को मर्डर करना होता है तो क्या करते हैं, चाकू ही चाकू के शेप का होता है लेकिन होता क्या है वो, हाँ कुछ मखमल या कुछ ऐसी चीज होती है, वो जब मारते हैं तो यहाँ पे एक पोटली रखी जाती है जो खून आए लाल कलर की, और जब वो मारा तो वो पोटली पे मारा, खून हो गया, और ये चाकू एक्चुअली चाकू नहीं, वो दब गया। वैसे ही जब अर्जुन और ये जा रहे थे जंगल में तो कांटों पे रखते थे, दुर्योधन को बड़ा खुशी होती थी, दुर्योधन बोलता था वाह वाह कांटा घुस गया, बहुत खुश होकर वो और भी वेदना देने की कोशिश करता था, उसको बड़ी खुशी होती थी, लेकिन फिर देखता था अरे इनको दर्द हुआ ही नहीं। तो आप सोचिए, किसी को हम तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, एटलीस्ट मेरे साथ, मेरे में बहुत ईर्ष्या है, किसी को मैं तकलीफ पहुंचाना चाहता हूं उसको तकलीफ ना हो, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति की ईर्ष्या और बढ़ जाती है, फिर वो और कुकर्म करता है और कुकर्म करता है, और ऐसे करके दुर्योधन ने अपने जल्दी जल्दी जो पुण्य कर्म थे उनको क्षीण कर दिया, और तब भगवान को मौका मिल गया, अब इसके कोई पुण्य कर्म नहीं रहे, भीम मारो जांग पे मारो, जो रूल नहीं है लेकिन रूल अब तोड़ सकते हैं क्योंकि अब उसके नियम नियम प्रकृति के नियमों के बाहर हम जा रहे हैं। तो ये भगवान करते हैं और ये भगवान का गुण है। तो वही चीज हम यहां पर देख सकते हैं कि अभी इसको मैं बताऊंगा क्यों मैंने ये बोला। ये प्रसंग असल में यहाँ पे प्रभुपाद जी, अगर तात्पर्य आपने ध्यान से सुना हो तो पहले भाग में तात्पर्य के प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति करने के लिए बहुत परिश्रम लगता है, बहुनाम जन्म नाम अंते, तो कई जन्म लग जाते हैं। अब ठीक है, प्रभुपाद जी तो ये बोले कई जन्म लग जाते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया नरोत्तम दास ठाकुर ने, सॉरी प्रभुपाद जी नहीं बोले, भगवान खुद बोल रहे हैं भगवद्गीता में, प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट किए। अब नरोत्तम दास ठाकुर थोड़ा सा कंसेशन देते हैं कि अगर कोई तीव्रता से भक्ति करता है तो उसको तीन जन्म लगते हैं, कम से कम तीन जन्म। अभी तीन जन्म क्या होते हैं उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा आज के दिन, लेकिन तीन जन्म कम से कम लगते हैं भगवत धाम जाने को, अगर कोई बहुत तीव्रता से करता है तो भी बहुत है। प्रभुपाद जी लेकिन जब आए तो प्रभुपाद जी बोले, नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला, मेरे गुरु महाराज भी बोलते थे भक्तिदास ठाकुर कि कम से कम तीन जन्म लगते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं वो करो। बहुत सरल, एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, एक शुद्ध भक्त के आदेशों का पालन करना बहुत सरल है अगर हम अपने भेजे को ज्यादा ना चलाएं उसमें, मतलब हम उसमें ज्यादा बाल की खाल ना निकालें, और ये ना बोले ये होएगा क्या, ऐसा शक ना करें, डाउट ना करें। संशयात्मा विनश्यति, संशय होगा तो विनश्यति हो जाएगा। अगर डाउट ना करें तो प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन मात्र करने से प्रभुपाद जी लेके जाएंगे हमको, ये प्रभुपाद जी बोले। तो ये चीज, लेकिन भगवान यहां पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो अगर हम सिर्फ इस तात्पर्य को ही ध्यान दें तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, भक्ति इतनी कठिन है क्या? छोड़ो है, एक जन्म ही बहुत मुश्किल से जा रहा है। मैं आपके सामने खुला साफ बोलूंगा, आज से 2-3 साल पहले तक मैं भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान जल्दी से आई वॉन्ट अ चेंज ऑफ दिस माइंड एंड बॉडी। खासतौर पर मन से मैं थक गया, इतना बकवास मन है, मैं कुछ भी अच्छा करना चाहता हूँ, ये अच्छा करने नहीं था, बुरा ही सोचता है। तो मैं भगवान से बोलता था जल्दी से जल्दी, अभी इस जन्म में कुछ तो मैंने भक्ति की है, पिछले जन्मों का मालूम नहीं, इस जन्म में कुछ तो किया है, तो अगर अभी मर जाता हूँ, ये 2-3 साल पहले था, अगर अभी मर जाता हूँ तो कुछ अच्छी ही गति होगी। ऐसा मुझे लगता था, लेकिन फिर मेरे को अब 2-3 साल में ऐसा लगा नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, अगर यही गति से चलता रहे, प्रभुपाद जी को सुनने के कारण काफी कॉन्फिडेंस आ गया। उस समय तक मैं ज्यादा नहीं प्रभुपाद जी को पढ़ता था, थोड़ा मैंने 3-4 साल में स्पीड बढ़ा दी अपनी पढ़ने की, प्रभुपाद जी को सुनने की पढ़ने की, तो ऐसा विश्वास आ गया कि मैं सही जगह पे चल रहा हूं। अब ऐसे ही अगर चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कुछ गड़बड़ ना करूं, खुद से जबरदस्ती खड्डे में पांव ना डालूं, या आ बैल मुझे मार ना बोलूं या ना करूं, तो थोड़ा समय में निकल जाऊंगा लगता है। ऐसा आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो निकल ही जाऊंगा, कि एक दिन वैकुंठ विमान ऐसे खड़ा होगा जैसे ध्रुव महाराज के लिए आया था, और मुझे ऐसे बुलाया जाएगा, ऐसे ही शायद हो सकता है, ऐसे ही भागवतम क्लास दे रहा हूं और आप सब साधु लोग बैठे हों, और वहां पे जैसे अभी भुवनेश्वर प्रभु आए हैं वैसे ही वैकुंठ के लोग आए हैं, और आके प्लेन में से बोले, अभी तो किसी और भक्त को लेके जा रहे हैं वैकुंठ धाम, लेकिन वो आए और मुझे ऐसे करें, और एकदम मैं भाग के उछल के बस प्लेन में चढ़ जाऊं और आप लोगों को बोलूं बाय बाय। तो हो सकता है, ऐसा लगता है मुझे कि अगर चलते रहें तो निकल जाऊंगा। तो अब मेरी प्रार्थना रहती है भगवान से, भगवान कृपा करके गाड़ी को डगमगाना नहीं, चलते रहने देना, और जब तक मैं वो चरम लक्ष्य तक, जैसा स्थिर बुद्धि हो गई मलय ध्वज की, वैसी ना पहुंच जाऊं तब तक कृपा करके मृत्यु मत आने देना, बाकी तकलीफ आए, लेकिन जिस समय वो परफेक्शन आ जाए, अभी नहीं लगता मुझे, अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर मैं मर जाता हूं तो पता नहीं कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा क्या बनूंगा, पता नहीं, मनुष्य तो नहीं बनने का गारंटी लगती है ऐसा, कि मनुष्य नहीं बनूंगा, तो इसलिए परफेक्शन मिल जाए। अब ये परफेक्शन मिलने के लिए प्रभुपाद जी यहां पर, भगवान ने तो बड़ा कठिन कर दिया, भगवान बोलते हैं बहु नाम जन्म नाम अंत है। अब जैसे मैं बोल रहा था कुछ साल पहले तक, मुझे लग रहा था ये जीवन बहुत हो गया, बोझ लग रहा था, और कॉलेज में तो बहुत ही बोझ लग रहा था, आपको सही बताऊं, बड़ी तपस्या थी, जब तक इस्कॉन के भक्तों के संग में नहीं आया तब तक तो जीवन ऐसा बोझ था, सुसाइड करने को तैयारी था। और ऐसे प्रभुपाद के कई शिष्यों ने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी, हम लोग जब आपके संग में आने के कारण हम बच गए, हम लोग सुसाइड करने ही जा रहे थे। ऐसे कितने उदाहरण है, एक आदमी था बाद में भक्त बन गया, नाम नहीं मालूम, वो आदमी दारू पी के, बस दारू पिया हुआ था और फ्रस्ट्रेटेड था, अमेरिकन, मतलब पैसे वैसे की कोई कमी नहीं, दारू पी के फ्रस्ट्रेटेड था, और वो बस डिसाइड कर लिया था मेरे को अभी आत्महत्या करनी है, और जा रहा था आत्महत्या करने, उतने में दारू के नशे में वो कहीं पर गिर गया, और जब गिरा तो एक कचड़े के डब्बे में उसका हाथ चला गया, और जब हाथ कचड़े के डब्बे में गया तो उठाया उसने कुछ अंदर से, और वो क्या थी? प्रभुपाद की भगवद गीता एज इट इज, और उसको उसने कहीं से भी ऐसे पढ़ा दारू के नशे में, और जो सेंटेंस उसने पढ़ा उससे उसने डिसाइड कर दिया मेरे को आत्महत्या करनी नहीं, और तुरंत इस्कॉन मंदिर में पहुंचा और ज्वाइन कर लिया, और उस समय सब लोग ज्वाइन कर लेते थे, सीधा ज्वाइन करते थे। प्रभुपाद ऐसे ऐसे आकर्षक चिंबक हैं जिनको देखते ही लोग ज्वाइन करते थे बस डूम डूम डूम, और प्रभुपाद के कारण दूसरों को, प्रभुपाद 80 साल के होने के बावजूद दूसरों को, जवान लड़कों को ऐसा जोश देते थे कि पूछिए मत। एक बता रहे थे प्रभुपाद डिसाइपल ही कि मायापुर में जब प्रभुपाद आए तो मायापुर में प्रभुपाद ये 75 या 76 की बात होनी चाहिए, तो मायापुर में सब भक्त लोग बाजू में थे, और ये नए थे, ये लॉस एंजल्स से गए थे, इन्होंने प्रभुपाद को अभी तक देखा नहीं था, वहां पे पीछे खड़े थे वो, उन्होंने देखा कुछ ऐसा एक एक जैसे वो भक्ति की बाढ़ होती है ना, तो बोलते हैं ना चैतन्य चरितमानस में बोला भक्ति की बाढ़ों की लहर आ रही है, ऐसी लहरें, कीर्तन चल रहा था, प्रभुपाद जी नहीं दिख रहे थे, छोटे थे प्रभुपाद तो हाइट में, बहुत एक हाइट में तो छोटे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य लंबे लंबे थे तो दिख नहीं रहे थे, और वो भी डांस कर रहे थे सब लोग तो दिख नहीं रहे थे प्रभुपाद, ये पीछे से देखे क्या हो रहा है, एक ऐसा धक्का लग रहा था उनको, भक्ति की लहरों का धक्का आ रहा हो, तो बोले क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो देखे आगे ऐसे आगे जाके तो प्रभुपाद जी उस समय जंप मार रहे थे, हरी बोल कर रहे थे, और ये देख के प्रभुपाद जी को जंप मारते हुए देख के भक्त लोग इतने जोर से जंप मार रहे थे कि हवा में एक कंपन आ गया था, जमीन कंपन आ गया था, इतने सारे वो भी अमेरिकन लोग तगड़े तगड़े होते हैं तो जब जंप मारेंगे तो कैसा कंपन आएगा, वो भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त, तो ये चीज प्रभुपाद जी लोगों को देते थे, ये चीज प्रभुपाद जी की किताबें देती थी। अब चीज ये है कि यहां पर प्रभुपाद जो बोल रहे हैं कि कठिन है, वो कठिन मार्ग और सरल मार्ग दो चीजें हैं। देखिए हम सबका चरम लक्ष्य है भगवान पे ध्यान करना, क्यों ध्यान करना, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं जो भी ध्यान मृत्यु के समय पे होता है वैसी गति अगले जन्म में होती है, जैसे पुरंजन का भी देख सकते हैं हम, पुरंजन ने स्त्री पे ध्यान किया, स्त्रियों से आसक्त था तो स्त्री पे ध्यान किया, काम वासना थी उसको, तो अगले जन्म में वो स्त्री बना, विदर्भी बना, तो वैसे ही मृत्यु के समय पे किसी तरीके से, किसी भी तरीके से भगवान की अगर याद आ जाए, पूरे जीवन याद ना आए, पूरे जीवन ऐसे ही सड़ते सड़ते चले जाए, परंतु जीवन के अंत में अगर भगवान की याद आ जाए सफल है ना, सफल किसी भी प्रकार से। और इसको ईशोपनिषद में वो प्रार्थना करते हैं एक भक्त भगवान से, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर क्रतोस्मर कृतम स्मर। ये श्लोक मैं भगवान को बार बार प्रार्थना करता रहता हूं, इसकी बहुत सुंदर भाव है भक्त का, और ये भाव लेना बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं हे भगवान, एक जो भक्त तक स्वाभाविक रूप से नम्र होता है, वो देखता है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं तो, लेकिन कुछ तो किया है मैंने, भक्ति की है पर अभी तक हृदय का बदलाव हुआ नहीं, हृदय में वही चीजें बैठी हुई हैं, वही वासनाएं बैठी हैं, वही मटीरियल अटैचमेंट आसक्तियां बैठी हैं, जा नहीं रही, तो कई बार भक्त को रोना भी आ जाता है, भक्त दुखी हो जाता है कि क्या होगा पता नहीं भगवान, और उस मूड में ये प्रार्थना है, बोलते हैं हे भगवान वायु रनलम अमृतम, मेरी जितनी भी वायु है शरीर में, ये पूरी जो वायु है विश्व की वायु उसमें मिल जाने दीजिए जो मृत्यु के समय पे होता है, और जो मेरा शरीर है वो मिट्टी में मिल जाने दीजिए, अब मुझे इससे इसकी कोई आवश्यकता नहीं लग रही क्योंकि मृत्यु आई चुकी है, परंतु हे भगवान इस समय पे आप कृपा करके ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर। अब देखिए उसने याद रखा है कि भगवान तो सब कुछ याद रखते हैं, भगवान ऐसा कंप्यूटर है, परमात्मा अंदर बैठे हैं वो याद रखते हैं, और 33 करोड़ देवी देवताओं को याद है कि हमने क्या किया, हम सबसे छुपा सकते हैं पर भगवान से कभी नहीं छुपा सकते, कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे विचार हैं, कई ऐसी वासनाएं जो हमको खुद को नहीं मालूम क्या चल रहा है अंदर, भगवान को मालूम है, फिर भी ये भक्त क्या बोल रहा है, भगवान को बोल रहा है ओम करतो स्मर करतो स्मर, भगवान मैंने कुछ तो किया आपके लिए इस जन्म में भक्ति, कुछ करने की कोशिश की, कुछ 5 बार 10 बार मंगल आरती आया हूँगा, जगते हुए आया तो बहुत बार मंगल आरती, लेकिन जगते हुए पांच बार तो आया होऊंगा। वो पांच बार जगते हुए मंगल आरती को जरा अटेंडेंस लगा देना। ये कमांडर ने मंदिर में तो अटेंडेंस लगाया मेरा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी लेके जाएगा मुझे, लेके तो आप जाओगे। तो वो अटेंडेंस, आप पांच जो अटेंडेंस है, देखिए भगवान आप ही भागवतम में कहते हैं कि एक बद्ध जीव जब मेरी भक्ति करने की कोशिश करता है तो मैं बहुत खुश होता हूं कि भैया इतनी तकलीफ ले रहा है मेरे लिए भगवान। थोड़ी सी हम भक्ति करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। और भगवद गीता में बोलते हैं नेहा विक्रमन आशोस्ति प्रत्यन्वायन, थोड़ा सा किसी ने किया स्वल्पम अप्यस्य, थोड़ा सा एक फूल लाके भगवान को दे दिया, भगवान बड़े कृतज्ञ होते हैं, वाह 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 वाह। क्योंकि बद्ध जीव के लिए भगवान के पास आना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम लोग अभी यहां पे बैठे हैं, कुछ लोग इस्कॉन की पूरी पॉपुलेशन भी अगर लें तो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कितनी होगी, 1% भी नहीं होगी, शायद आधा परसेंट कुछ होगा। इतने से लोग, बाकी लोग 8 बजे से 9 बजे सुबह क्या करते होते हैं, कंपनी में गधे जैसे काम करते होते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं वो अलग है, मैं एकदम वो फिर भी एक तरीके से ठीक है, किसी भी तरीके। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं एक अनुवाद में पांचवें स्कंद के, कि अगर कोई मायावादी भी है उसको भी साधु बोला जाता है, कम से कम अध्यात्म के बारे में कुछ सोच तो रहा है, चलिए गलती सोच रहा है पर अध्यात्म के बारे में सोच रहा है, वो भी बड़ा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो निपट कर्मी है, पूरी तरीके से कर्मों में लगा, कर्मी भी नहीं विकर्मी है, सॉरी, आज समाज में सब विकर्मी है, कर्मी भी कोई नहीं है, कर्म कांडों में भी नहीं लगा, शास्त्रों का अनुमोदन ही नहीं कर रहे, शिव जी की पूजा करते हैं एक बार भी पढ़ते नहीं, शिव पुराण में शिव जी की पूजा कैसे करने को बोली। अब एक सिंपल सा, मैंने भी शिव पुराण नहीं पढ़ा, आप लोग बाद में बता सकते हैं मैं गलत हूं तो, लेकिन एक मेरे को ये लगता है कि भागवतम बोलता है कि शिव जी जो है वैष्णवानाम यथाशंभु, सबसे बड़े वैष्णव है, तो उनको क्या भांग का क्या बोलते हैं उसको, धतूरा का भोग लगाना थोड़ा मेरे को डाउटफुल लगता है। पता नहीं वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपने अपने भूत पिशाचों को खिला देते हैं, वो है क्या उसमें, लेकिन शिव पुराण में ऐसा भोग दिया है क्या मुझे पता नहीं, एनीवेज वो होगा। पर अध्यात्म में जो लोग लगे हैं उनके मुकाबले बाहर जो कर्मी है, निपट कर्मी, उनकी कितनी गणना है। तो हम लोग थोड़े से लोग यहां पर आके बैठे हैं, बाकी सब तो उसी में लगे हैं, क्या करते होंगे, कंपनी में काम कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। तो अब ऐसे में हम आए, इतने से निकल के हम भी उसी में लगे हुए थे, आप में से ज्यादातर लोग लगे होंगे, वही भेड़ चाल में लगे हुए थे, वही भेड़ चाल, बस भाग रहे थे भाग रहे थे भाग रहे थे, समहाउ और अदर किसी प्रकार से हमारा भाग्य खिला और भक्त हमको मिले, या तो किताब मिली होगी, रथ यात्रा कुछ देखा होगा, और हमने हमने मुख इधर मोड़ा, अरे यहां भी कुछ है क्या, चलो चलते हैं। एक आध बार आ गए, फिर थोड़े सीरियस थे, फिर तो और सीरियस हुए, सीरियस 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 सीरियस, उसकी सीमा ही नहीं है भगवत धाम जाने तक। तो अब चीज ये है, यहां पे हम आए उधर से ही, तो अब यहां से हमको जाना है भगवत धाम। अब भगवत धाम जाने के लिए भगवान से ये प्रार्थना करना जरूरी है, भगवान तो बड़े खुश हो रहे हैं कि इतना करने आ गया, अब लेकिन हमको ये लगना चाहिए भगवान देखो इतना तकलीफ होती है, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है अभी भी मंगल आरती के लिए उठने में, अलार्म कई बार मैं लगाता हूँ, जितने बजे का भी अलार्म लगाता हूँ, वो तीन, मैंने चार अलार्म लगाए हुए हैं, पहला बजता है मैं बंद कर देता हूँ, दूसरा बजता है मैं बंद कर देता हूँ, तीसरा बजता है वो भी बंद कर देता हूँ, चौथे में समा उठ जाता हूँ तो चार अलार्म लगाने के बाद उठता हूँ, इतने साल हो गए अभी भी तो बड़ी तकलीफ, तो भगवान से लगता है भगवान कृपा करके देख लेना इतना किया है, तकलीफ में किया है, आप खुश हो जाओ समा और दिया दे। और वो ही भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। अब ये प्रार्थना, और 15 मिनट है, 10 मिनट में मैं खत्म करना चाहूंगा, फिर कोई प्रश्न उत्तर ले ले सकते हैं। अब ये प्रार्थना जो है थोड़ा सा और इसको गंभीरता से थोड़ा सा और ठीक से देखेंगे, इसमें मैंने जो लिखा है ये भक्त का एक होप रहता है कि हालांकि मेरे अंदर बहुत ही गंदगी है, लेकिन शायद मृत्यु के समय पे भगवान से अगर ऐसा बोला तो भगवान याद करेंगे। लेकिन फिर इसमें एक और बाधा आ जाती है, वो बाधा क्या है, भगवान डायरेक्ट हमारी प्रार्थना सुनते ही नहीं है, अरे भाई अब क्या करेंगे, अब तो फंस गए। अब भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि मेरे पास आना है तो मेरे भक्त की शरण लेना जरूरी है। और इसको नरोत्तम दास ठाकुर एक सॉन्ग में बोलते हैं, आशा क्या बोलते हैं, आश्रय लोइया यही भजे कृष्ण तारे नाही त्यजे। जो आश्रय लेके भगवान को भजता है, जो गुरु की आश्रय लेता है, जो वैष्णव की आश्रय लेता है और फिर भगवान को भजता है, उसको कृष्ण कभी नहीं त्याग पाते। क्यों नहीं त्याग पाते? क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों के गुलाम है। सीधी साफ बात यह है। कहीं अगर नई कोई बैठे हो तो उनको बुरा भी लग जाएगा, शुरुआत में बुरा लगता है, कृष्ण कैसे गुलाम हो सकते हैं। नहीं, कृष्ण स्वीकार करते हैं, मैं अपने भक्त का गुलाम बनना चाहता हूं, उनको अच्छा लगता है। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण है पर उनमें मैं नहीं जाऊंगा। एक बाप को भी अपने बेटे का कभी कभी घोड़ा बनना अच्छा लगता है, तो वैसे ही कृष्ण को अपने भक्तों का दास बनना अच्छा लगता है। और यही गोलोक वृंदावन की महानता है। वैकुंठ से गोलोक वृंदावन क्यों महान है? क्योंकि गोलोक वृंदावन में भगवान को भक्त सजा भी देते हैं। कई बार भगवान खेलते हुए माँ यशोदा बुलाती हैं कि अरे नंद महाराज भूखे हैं बेटा, आ जाओ, कृष्ण बलराम, तो भगवान जाने लगते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, ए कन्हैया अगर अभी चले जाओगे ना तो ध्यान रखना कट्टी हो जाएंगे हम, और कभी खेलने नहीं आना, फिर भूल जाना खेलने को, तो हमारे साथ नहीं खेलना, कहीं भी जाना हमारे साथ मत खेलना। तो ये जो चीज़ है ये भगवान ही चाहते हैं, और ऐसे भक्तों का आश्रय लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं एक कल परसों ही एक भक्त के साथ चर्चा कर रहा था, कुछ भक्तों के साथ, तो मैंने ये उदाहरण दिया कि मान लीजिए यहाँ से आपको अमेरिका जाना है तो दो तरीके हैं। एक तो बड़ा कठिन मेहनत करो, 12वीं में अच्छे नंबर लाओ, 18-18 घंटे पढ़ो, फिर IIT में जाओ, फिर IIT में भी अच्छे लाओ, या IIT में मत जाओ, नॉर्मल इंजीनियरिंग करो, फिर गेट, TOEFL और GRE वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनमें पास हो, फिर उसके बाद में स्पॉन्सरशिप अगर मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो हाफ स्पॉन्सरशिप मिली तो कहीं और से जुगाड़ करो, पिताजी देंगे जिनका लोन बाद में चुकाना होगा। पिताजी भी उस उम्र में देते हैं तो बोलते हैं भाई बेटा अभी दे रहा हूँ, लोन चुका देना, कम से कम इंटरेस्ट मत देना तो उतना देना, तो ये सब करो और फिर अमेरिका जाओ। और दूसरा एक तरीका है, कुछ मत करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, कुछ नहीं करना, आसान मार्ग क्या करो, कोई अमीर अमीर लोग यहाँ पे आए अमेरिका से, जैसे ट्रंप का भी यहाँ पे बिजनेस है, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्रेसिडेंट हुए उनका बिजनेस है यहाँ पे, उनके पास जाओ, किसी तरीके से उनकी चाकरी करो, उनके जूते साफ करो, उनके जूते चाटो चाहे तो, उनके कपड़े धो, कुछ भी करो, मतलब कुछ भी जो लगता है करो, वो जो बोले बस चुप होके, बुरा लगता है उसका नहीं करना है लेकिन कर दो, किसी भी तरीके से कर दो। अब डोनाल्ड ट्रंप तो अच्छा ही नहीं लगेगा क्योंकि ऐसा शोषण करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी भी तरीके से कर दो, उसको खुश कर दिया। अब बोलेगा बेटा क्या चाहिए तुझे, हाँ भाई ऐसा है क्या अमेरिका जाना है, अब तो बड़े आदमी हो थोड़ा दिला दो। अब वो जो मेहनत करके इतना पढ़ाई करके जो आदमी गया, उसको हो सकता है $10,000 की एक पेमेंट मिल जाए, लेकिन ऐसे जो चापलूसी करके गया, वो मेहनत कुछ नहीं की, हालांकि की मेहनत लेकिन बहुत कम मेहनत की उसने, और वो वहां पे जाके वो डोनाल्ड ट्रंप अगर खुश हो गया तो क्या बोलेगा, मेरी जायदाद का आधा वारिस तू। अब उसकी जायदाद बहुत ज्यादा है, अमेरिका का सबसे अमीर आदमी है, और यहां पे हम जिनकी भक्ति करने जा रहे हैं वो सबसे सबसे अमीर आदमी है, ठीक है, भगवान कृष्ण। और अब डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है तो एक बहुत आसान तरीका है, प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ यू लव मी लव माय डॉग। अगर किसी का कुत्ता चल रहा है, जो लोग कुत्ते से बड़े आ सकते हैं, कुत्ते को आप कुछ खिलाओ, बड़े खुश होते हैं, अरे मेरे कुत्ते को प्यार करते हैं। ऐसे ही माँ बाप के लिए बच्चा होता है, बच्चे माँ बाप को कुछ मत बोलो, हरे कृष्णा भी मत बोलो, बच्चे को बोलो ऐसे, बच्चे के लिए एक रसमलाई लेके आओ, माँ बाप को लगे अरे वाह। वैसे ही भगवान के बच्चे हैं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी तो बहुत प्रिय हैं, प्रभुपाद जी बहुत प्रिय हैं, और उनको अगर किसी तरीके से रिझा दिया, किसी तरीके से उनके पर्सनल सर्वेंट बन गए, किसी तरीके से उनके जूते साफ कर दिए, उनकी धूल अगर ले ली, भागवत में प्रहलाद महाराज बोलते हैं महीयसाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत, कि जो निष्किंचन भक्त हैं, जिनको भगवान के अलावा कुछ नीचे कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, इनका अगर चरण धूलि की रज किसी तरीके से उससे नहा लिया जाए तो उसको भगवान प्राप्त हो सकते हैं, उसको नहीं जो डायरेक्ट भगवान को पास जाना चाहता है। नैषां मतिस्तावद् रुक्रमाङ्गिभिः स्पृश्यत्यनर्थापगमो यदर्थः, हालांकि अनर्थ उसके अंदर हो सकते हैं लेकिन जब महीयसाम पाद रजोभिषेकम करेगा वो तो तुरंत से उसको पहुंच जाएगा। और इसको बोलते हैं मराठी में वशीला, जो महाराष्ट्रीय होंगे, या इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोच रोड। एक तरीका है, दो तरीके हैं भगवान भगवत धाम जाने का। एक अपनी मेहनत करो, जो यहां पे मलय ध्वज ने की, बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत मेहनत कर करके पहुंचा। और दूसरा तरीका है पहचान लगाओ। और ये पहचान लगाने के लिए भेजते कौन है अपने बच्चों को यहां पे? स्वयं भगवान भेजते हैं, बार बार भेजते हैं। खुद आते हैं तो ठीक है, खुद आते हैं तो चक्र से मार देते हैं, वो फिर देखते नहीं। लेकिन जब बच्चों को भेजते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद, इनको जब भेजते हैं तो ये मारते नहीं, हमारा किसी ना किसी तरीके से उद्धार करते हैं। और इतना तकलीफ लेते हैं खुद, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने उस समय जब प्रभुपाद जी आविर्भाव किए थे 1896 में, भक्ति विनोद ठाकुर ने एक किताब लिखी, टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और वो सोचो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने सपना देखा, जिस समय भारत परतंत्र था, भारत गुलाम था, जिस समय भारत को कोई पूछता भी नहीं था, उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने वो कहां पे भेजी वो किताब? अमेरिका भेजी, अमेरिका में। और जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, प्रभुपाद जी के एक शिष्य एक यूनिवर्सिटी में गए, वहां पे लाइब्रेरी में वो किताब मिली। अब उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने एक कामना की थी कि कब वो दिन आएगा जब जापानी, इंग्लिश, अमेरिकन, साउथ अफ्रीकन, अफ्रीकन, काले गोरे सब मायापुर में आके चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में जोर जोर से नाचेंगे और गाएंगे हरी बोल हरी बोल। अब कोई सोच भी नहीं सकता था, लोगों ने शक किया, ये क्या, कई लोग प्रभु, जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती उसके बाद इतना प्रचार किया कि 64 गौड़िया मठ बना दिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन मेरे गुरु भाइयों को डाउट था। कई बार प्रभुपाद जी के खुद के गुरु भाई जो सीनियर थे, बहुत ज्यादा सीनियर थे, सन्यासी थे, वो प्रभुपाद जी के पास आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जाने के बाद, और क्या बोले बताए? बोले, अरे अभय बाबू, क्या आपको विश्वास है कि ये चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला पृथ्वी थे आछी अत नगरादि ग्राम, ये होगा क्या? ये संभावना है? ये कैसे, ये ज्यादा तो नहीं बोल दिया? कई बार वो बोले, कई बार शास्त्रों में वो क्या बोलते हैं, अति उक्ति, या कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है, एग्जैजरेट किया जाता है, ऐसा तो नहीं है? प्रभुपाद जी पूरे विश्वास से बोले, जैसा बोला है वैसा ही होगा। दूसरा एक बार उन्होंने बोला, दूसरे एक चीज पूछते थे, हे अभय बाबू, ये बताओ जो हमारे गुरु महाराज बोलते थे भगवत धाम है, भगवत धाम में जा सकते हैं, क्या ये भगवत धाम वगैरह कुछ होता है क्या? ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ये प्रभुपाद जी कॉन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी खुद बता रहे हैं कि मेरे गुरु भाइयों को मेरे गुरु महाराज के जाने के बाद शक हुआ, संशय हुआ कि जो हमारे गुरु महाराज ने भगवत धाम के बारे में बोला है और वहां जा सकते हैं, उस पर डाउट था। भगवत धाम हो सकता है वो बोलते थे, हम जा सकते हैं वहां पे। और सही बात है, अगर ये तात्पर्य पढ़े पहला भाग इस भाग का, इस तात्पर्य का, तो डाउट लगता है हम जा सकते हैं क्या, हमारी औकात क्या है, पता है आप लोगों को लगता होगा, लेकिन डाउट होता है काफी। अगर प्रामाणिकता से सोचे, बहुनाम जन्म नाम अंत जहां लगते हैं, मैंने किया क्या है, मेरे क्या कितने कुकर्म करके यहां पे आया हूं, इस जन्म में भी पिछले जन्म में भी, अपनी वासनाएं देखें अंदर खोल के सच्चे हो गए तो क्या गंदगी है अंदर, मतलब चेहरा देखने का दिल नहीं करता, आईने को देखने का दिल नहीं करता, नफरत हो जाती है। लेकिन ये तरीका अगर हम अपनाएंगे कि भगवान के भक्तों का आश्रय लेंगे, और इसको मैं कंक्लूड करूंगा एक श्लोक बोल के, बहुत सुंदर श्लोक है, फिर उसके बाद आप लोगों को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। इसमें ये श्रीधर स्वामी भागवतम पे जब कमेंट्री लिखते हैं तो ये श्लोक बोलते हैं कि किस तरीके से मैं उन लोगों को नहीं देखता कि जो लोग बहुत तपस्या करते हैं वगैरह, बहुत ही सुंदर श्लोक जाता है, बोलते हैं तपन्तु तापैर प्रपतन्तु पर्वतान अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान यजन्तु यागैर विवदन्तु वादैर हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति। बोलते हैं तपन्तु तापैर, उन लोगों को क्या देखना, वो रहने दो, उन लोगों को करने दो क्या जो बहुत तप करना चाहते हैं, जंगल में जाके आग जला के, ठंड गर्मी के मौसम में आग जला के और ठंडी के मौसम में एकदम ठंडे पानी में आधे डूब के तपस्या करना, नहीं करने दो उनको। तपंतु तापय प्रपतंतु पर्वताद, और जो लोग वो कूदना चाहते हैं पहाड़ों से, जैसे अमेरिका में आप लोगों को मालूम होगा बिंगो बिंगो जंपिंग है, यहां पे पैर को बांध देंगे, पैर के नीचे रस्सी बांध देंगे, पागल लोग हैं, और पहाड़ के ऊपर जाएंगे वहां से कूदेंगे नीचे रस्सी बांध के, क्या फटता होगा, लेकिन जिंदा रहते हैं वो लोग, तगड़े तगड़े लोग हैं वो, आगे कूदते हैं वो, ऑफकोर्स ड्रग्स व्रग्स लेके करते हैं, ऐसे लोगों को भी करने दो। और तपंतु तापय प्रपंतु पर्वताल अतंतु तीर्थानी, जो लोग तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं उनको तीर्थ यात्रा करने दो। महाराज कुलशेखर बोलते हैं ये जो तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करना और नदियों में वहां पे नहाना, गंगा यमुना में, वो सिर्फ ऐसा है अगर भगवान हरि के चरण कमलों की याद ना रहे या उनके भक्तों की याद ना रहे तो वो इतने तीर्थ स्थानों पे जाके स्नान करना और इतने तीर्थ स्थानों की यात्रा करना वो ऐसा है कि मोटापा हो गया तो मोटापे को कम करने के लिए तरीका। मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक कर लिया तो वो मॉर्निंग वॉक करने चले गए, मोटापे को कम करेंगे भक्ति नहीं होगी। तो वही यहां पे बोल रहे हैं अटंटू तीर्थानी प्रपंत पठंतु चागमान। और कई लोग वेद अध्ययन करना चाहते हैं, बड़े पंडित बनना चाहते हैं, बनने दो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। और दूसरे क्या करते हैं, यजंतु यागई, जैसे गृहस्थों को बोला गया है पांच प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करो, ब्रह्मचारी के लिए भी अलग अलग चीजें हैं, वो यज्ञ अनुष्ठान करते रहो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, श्रीधर स्वामी बोलते हैं। यजंतु यागई और विवदंतु वादई। और कई लोगों को बड़ा शौक है, आजकल तो नहीं है, आजकल भी है कुछ लोगों को लेकिन ज्यादा नहीं, पिछले जमाने में आज से 50-60 साल पहले ये नॉर्थ इंडिया में लोग वाद विवाद करते थे। और चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि मायापुर में जब भक्ति अद्वैत आचार्य ने देखा लोगों वाद विवाद करने में बड़े, ये बड़ा है कि वो बड़ा है, शिव बड़े हैं कि ये बड़े हैं कि ये बड़ा है, और भक्ति में भी आ गए कृष्ण भक्ति में भी, तो ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, तर्क वितर्क की बुद्धि है, तो उनको वो करने दो, मैं उस सब में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, हरिम विना नहीं मृतम तरंती, मैं कंप्लीटली कन्विंस्ड हूं, मेरे को पूरा विश्वास है कि हरि की याद नहीं रही मृत्यु के समय पे तो कुछ नहीं होने का, ठेंगा होगा, वापस यहीं पे आएंगे। तो ये चीज हमको हरि की याद दिलाने के लिए उनके दासों की याद करना, और खास तौर पर शिला प्रभुपाद, अगर शिला प्रभुपाद के लिए हमारा शरीर का एक एक पुर्जे को तोड़ दिया जाए, ये खाल को उधेड़ दिया जाए और उधेड़ के उसका कचुंबर बना के उसका जूस बना के कुत्तों को पिला दिया जाए तो भी कम होगा, इतना प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया है। और हम अगर थोड़ा भी कुछ कर सकें, जितना हो सकता है, हमको तुरंत वीजा मिलेगा उस देश का। चलो पखी रूपे देश जाई, जे देश ते मनेर मानुष, जे देश ते मनेर मानुष, आशा जाओ या नाई, केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले, मनो प्राण कान देना। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं चलो उस देश, चलो उस देश, चलो यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर नहीं है, चलो पक्षी रूपे देशे जाई, जे देशे ते मनेर मानुष, आशा जाओ या नाई, जहां पे ये मन का जो मानुष है, ये जो परेशान करने वाला कीड़ा बोलो या डीमन राक्षस बोलो, ये मन का मानुष वहां नहीं आएगा, उस देश चलो। लेकिन उस देश जाने का आसान तरीका ले लो तो बहुत अच्छा, कठिन तरीका लें तो बहुनाम जन्म नाम अंत में फंस जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, यहाँ पे समाप्त करेंगे। एक मिनट है अगर किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो जल्दी पूछिएगा। फिर थोड़ा जल्दी बोलेंगे प्रभु, प्रश्न या कमेंट पे आ जाइए। समय के अभाव होता है इसलिए प्रभु बोले, थोड़ा जल्दी, जिस व्यक्ति को वो गीता मिली उसका जीवन बदल गया, तो श्रीमद् भागवत अब वो प्रभु जी दो चीज बोल रहे हैं, एक चीज कि हमको ग्रंथों को अच्छे से रखना चाहिए, परंतु ग्रंथ डब्बे में डाल दिया, किसी ने डब्बे में डाला, वो कर्मी था ऑफकोर्स, भक्त ने नहीं डाला था, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसी को पसंद नहीं आया, उसने डाल दिया, अब उससे उस व्यक्ति का भला हो गया, किसी और का भला हो गया, तो ये भगवान की योजना है। तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन तो है ही नहीं, भगवान की कई योजनाएं होती हैं, भक्त लोग तो आदर करेंगे, लेकिन कई कर्मी ऐसे अपराध करेंगे, लेकिन उससे भी किसी का भला होगा। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि इनडिस्क्रिमिनेटली बुक डिस्ट्रीब्यूशन, किसी ना किसी तरीके से बुक चली जाए, वो कहीं पे भी होंगे, कहीं ना कहीं उसका ब्लास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय।